पृष्ठ संख्या 43। जापान। आधुनिक जापान का उदय। पहले उल्लेख किया जा चुका है कि साम्राज्यवादी नियंत्रण से बचा रहने वाला एकमात्र एशियाई देश जापान ही था। जापान में असली सत्ता सदियों से शोगुन कहे जाने वाले सैनिक नेताओं के हाथों में थी और जापानी सम्राट नाम मात्र का शासन अध्यक्ष था। लगभग 200 वर्षों से जापान बाकी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटा हुआ था। कई दृष्टियों से जापान की समाज व्यवस्था सामंती यूरोप के समान थी, लेकिन तभी 19वीं सदी के मध्य में जब जापान की आज़ादी को खतरा पेश आया तो सहसा उनकी तंद्रा भंग हुई और वह आधुनिक विश्व की वास्तविकताओं के प्रति जागृत हो उठा। फिर कुछ ही दशकों के दौरान वह न केवल विदेशी प्रभुत्व के खतरे को दूर भगा देने में कामयाब हो गया, बल्कि उसने अपने समाज के कुछ क्षेत्रों का आधुनिकीकरण भी कर लिया, जिसके फलस्वरूप वह शीघ्र ही एक विश्व शक्ति बन गया। 1853 में कमोडोर पेरी ने संयुक्त राज्य के एक बेड़े के साथ जापान पहुंचकर उस पर एक अंतिम चेतावनी ठोक दी, जिसमें कहा गया था कि अनिवार्य कारणों से यह जरूरी हो गया है कि दुनिया के इस सुदूर कोने में हम अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करें और इस उद्देश्य से चाहे जितनी सख्त कार्रवाई करनी पड़े करें, ताकि उन शक्तियों के मंसूबों को विफल किया जा सके जो हमारी तरफ सिद्धांतों के पालन में विश्वास नहीं करती। 8 महीने बाद जब पेरी एक और भी बेड़े के साथ जापान लौटा तो जापान सरकार ने संयुक्त राज्य के साथ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके अनुसार दो बंदरगाह अमेरिकी जहाज़ों के लिए खोल दिए गए और संयुक्त राज्य को थोड़ा बहुत व्यापार करने की इजाज़त दे दी गई। इसके बाद कई यूरोपीय देशों के साथ इसी तरह की संधियां की गई। 1863 और 1864 में अमेरिकी तथा यूरोपीय बेड़ों ने दो जापानी नगरों पर गोलाबारी करके अपनी सैनिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। 1868 में शोगुन का शासन समाप्त कर दिया गया और अब शासकों तथा सलाहकारों का एक नया समूह सामने आया। सैद्धांतिक रूप से सम्राट की सत्ता को पुनर्प्रतिष्ठित कर दिया गया और वे लोग सम्राट के नाम पर शासन करने लगे। नए सम्राट ने मेजी की उपाधि धारण की, जिससे यह घटना मेजी पुनर्प्रतिष्ठा, मेजी रेस्टोरेशन के नाम से विख्यात हुई। मेजी पुनर्प्रतिष्ठा के 4 दशकों के अंदर ही जापान की आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का कायाकल्प हो गया। जापान सरकार ने उद्योगों में काफी पूंजी लगाई, जिसके लिए पैसा भारी कराधान और किसानों के शोषण से जुटाया गया। बाद में ये लोग उद्योग पूंजीपतियों के हाथों बेच दिए गए। आगे उद्योग आरंभ करने में सरकारी सहायता की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जापानी पूंजीपति अपने ही बूते पर यह काम कर सकते थे। उद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के साथ ही किसान विपन्न होते गए और वे अक्सर विद्रोह कर देते थे। उनमें से बहुत से लोग शहरों में जा बसे, जहां वे उद्योगों के लिए सस्ता श्रम मुहैया करने लगे। 20वीं सदी के आरंभिक वर्ष आते आते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जापानी माल, खासकर जापानी कपड़े, यूरोपीय माल के साथ सफलतापूर्वक होड़ करने लगे। अधिकांश जापानियों के बहुत गरीब होने के कारण देश के अंदर जापानी माल की मांग बहुत सीमित थी। 1889 में जापान में एक नया संविधान लागू किया गया, जिसमें कार्यपालिका के प्रधान के रूप में सम्राट को एक विशेष स्थिति प्रदान की गई। उसे मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया और मंत्रियों को उसी के प्रति जिम्मेदार बनाया गया। सम्राट को स्वर्ग से अवतरित, दिव्य एवं पुनीत मानते हुए कहा गया कि अपने समस्त प्रजाजनों में उसका स्थान सर्वोपरि है, उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा का भाव रखना चाहिए और वह परम पावन है, जिसे कहीं से कोई कलुष नहीं लग सकता। संविधान में एक संसद की व्यवस्था की गई, जिसे डाइट की संज्ञा दी गई। आबादी के 3% से भी कम लोगों को मताधिकार दिया गया। डाइट को कोई खास अधिकार नहीं दिया गया, मंत्री उसके प्रति जिम्मेदार नहीं थे और वित्तीय मामलों में भी उसके अधिकार सीमित थे। नई राजनीतिक व्यवस्था में सेना को विस्तृत अधिकार दिए गए और कालांतर में व्यवस्था पर उसका दबदबा कायम हो गया। थल सेना और नौसेना ही अपने अधिकारियों एवं थल सेना तथा नौसेना के मंत्रियों की नियुक्ति करती थी और डाइट का उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। अब जो शैक्षिक व्यवस्था कायम की गई उसके अधीन कुछ ही समय में आबादी के एक विशाल भाग को साक्षर बना दिया गया। इससे जापानी लोगों को उद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल सीखने में सहूलियत हुई। शिक्षा प्रणाली को ऐसा रूप दिया गया जिससे सम्राट के प्रति पूज्य भाव को बल मिले और लोगों में प्रबल राष्ट्रवाद की भावना जागे। जापान में नागरिक स्वतंत्रताओं तथा खुली राजनीतिक स्पर्धा का अभाव था। राज्य एक अल्पतंत्र ओलिगार्की के नियंत्रण में था और उसके दमन के तंत्र को, खासकर पुलिस को, विस्तृत अधिकार दिए गए। वह समाचार पत्रों पर नियंत्रण रख सकता था और सार्वजनिक सभाओं एवं प्रदर्शन का आयोजन रोक सकता था। राजनीतिक विषमति से वो कुछ भी सहन नहीं किया जा सकता था। किंतु इन तमाम कठोर प्रतिबंधों के बावजूद एशिया में सबसे पहला समाजवादी गुट जापान में ही गठित किया गया। जापान एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में 19वीं सदी के अंतिम दशक तक जापान औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग पर चल निकला। इन महत्वाकांक्षाओं की दिशा मुख्य रूप से चीन की ओर थी और इनका उद्देश्य पूर्वी एशिया में जापानी प्रभुत्व की स्थापना करना, बाद में जापानी महत्वाकांक्षाओं के दायरे में पूरे एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र का समावेश हो गया। अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ बनाकर जापान ने 1895 में चीन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और उसे पराजित कर दिया। उसने फार्मूसा, ताइवान को जो चीनी प्रदेश था, अपने साम्राज्य में मिला लिया और चीन को कोरिया की, जिस पर चीन का अपने अधिराजत्व सुजरेंटी का दावा था, स्वतंत्रता को मान्यता देने पर मजबूर किया। कोरिया में जापान का उद्देश्य कोरिया की स्वतंत्रता बनाए रखना नहीं बल्कि वहां से चीन के प्रभाव को समाप्त करना था, ताकि वहां जापान को अपना असर बढ़ाने का पूरा अवसर मिल सके। 1905 जापान ने कोरिया को अपना संरक्षित राज्य बना लिया और 1910 में उसे अपने राज्य में शामिल भी कर लिया। 1889 ईस्वी में संयुक्त राज्य तथा यूरोपीय देशों ने एक महाशक्ति के रूप में जापान की स्थिति को स्वीकार करते हुए उन सभी रियायतों और अधिकारों का त्याग कर दिया जो उन्होंने 1854 के बाद जापान पर थोपी गई संधियों के फलस्वरूप प्राप्त किए थे। 1902 में इंग्लैंड और जापान के बीच मित्रता की संधि हुई। इस प्रकार जापान अन्य औपनिवेशिक शक्तियों के साथ बराबरी के दर्जे पर आने वाला प्रथम एशियाई देश बन गया। इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने में ब्रिटेन का उद्देश्य रूस के चीन संबंधी मंसूबों पर अंकुश लगाना था। 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इस लड़ाई में रूस पराजित हुआ। दक्षिणी मंचूरिया को जापानी प्रभाव क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जापान ने सखालिन द्वीप पर भी आधा हिस्सा हासिल कर लिया और लियाओतुंग प्रायद्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चीन पर अपना संरक्षण स्थापित करने की कोशिश की। भले ही अपने इस उद्देश्य में वह सफल नहीं हुआ, लेकिन चीन में अपने प्रभाव का विस्तार करने में कामयाब हो गया। हालांकि जापान एशिया में साम्राज्यवादी नीतियों पर ही चल रहा था, फिर भी एक महाशक्ति के रूप में उसके उदय से अनेक एशियाई देशों में राष्ट्रवाद को एक नई प्रेरणा और स्फूर्ति प्राप्त हुई। रूस के खिलाफ उसकी लड़ाई से साबित हो गया कि कोई गैर गोरा एशियाई देश भी यूरोप की एक बड़ी शक्ति को परास्त कर सकता है। किंतु यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि जापानी साम्राज्यवाद के मुख्य शिकार यूरोपियन नहीं बल्कि एशिया के ही दूसरे देश थे। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान का महाशक्तियों के रूप में उदित होना इस बात का संकेत था कि विश्व में यूरोप का बोलबाला अधिक दिनों तक कायम रहने वाला नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध ने इस प्रक्रिया को गति प्रदान की।